ॐ नमः सिद्धये ॐ नमः सिद्धये ॐ नमः सिद्धये ॐ शुद्धात्मने सम्यक् दर्शन चरण गुण पायकु कर्म कृपा केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवया जिन वाणी के ज्ञान से पतत्व श्रद्धा चरण भारी के बदल है पावे पद निर्वाण नेमी चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उचास ते जाने निज तुम्हें था लब्धि सार को पाय कर करि कै क्षपणासा हो है प्रवचन सार सो समय सार अधिकार।
तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में चारों ही अनुयोगों द्वारा हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला है। यहाँ उसमें से जो करणानुयोग ग्रंथ है उनके आधार से हम जीव की 20 प्ररूपणाएं देख रहे हैं। चार अनुयोग के नाम मालूम है? हाँ भविष्य याद है? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। उसमें से अभी हम यहाँ करणानुयोग देख रहे हैं। कर्ण यानी जीव के परिणाम। कर्णानुयोग में त्रिलोक की रचना बताई जाती है, जीवों के परिणाम बताए जाते हैं और कर्मों का भी सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। यह अत्यंत तो सूक्ष्मता से ही इसमें वर्णन है जो सभी केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और भगवान की वाणी के लिए कोई प्रूफ नहीं जरूरी होता। इसको कहते हैं भगवान का वचन जो है वो स्वयं प्रमाण है और जो स्वयं प्रमाणभूत वस्तु होती है उसे अन्य प्रमाण की प्रूफ की जरूरत नहीं होती। भाई अमेरिका में सूरज उगता है तो कौन से टॉर्च लाइट से आप देखते कि उग गया है कि नहीं उग गया? फ्लैश लाइट क्या कहते हैं? जरूरत होती है? अरे वो स्वयं प्रकाशित है, उसके प्रकाश में हमें अन्य वस्तुओं का भी निर्णय होता है। तो वो उग गया कि नहीं उग गया देखने के लिए अन्य लाइट लेके नहीं ढूंढना पड़ता कि अरे सूरज आए कि नहीं अभी ऊपर। ऐसे ही भगवान का वचन इटसेल्फ स्वयं प्रमाणभूत वस्तु है तो उसके लिए अन्य किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ जो भगवान के वचन है ये तो करणानुयोग के हमें तो प्रमाण है। यहाँ तो मेरु पर्वत कितने ऊंचाई वाला है, स्वर्ग नरक की क्या रचना है, कितने गति वाले जीव है, कौन कौन से पर्याय में जीव है, उनकी कितनी संख्या है, कौन जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होता है, इसलिए भगवान का वचन हमें प्रमाण है। द्रव्यानुयोग के सिद्धांत जो है वे भी भगवान ने ही बताया है, परंतु उन वचनों की परीक्षा हमें करना ही चाहिए। कैसे है वे वचन? इस विश्व में 6 द्रव्य है वो स्वयं परिणमन करते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। ये 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, उनका ये जो कोई बताया है स्वरूप कि वस्तु उत्पाद वेद्रोत्मक है और उसकी शक्ति से वो स्वयं परिणमित होती है। सच्चा देव क्या है, गुरु क्या है, शास्त्र क्या है, इनका हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं और ये हमारा पहले में पहले कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को परीक्षा पूर्वक स्वीकार करें। करणानुयोग में कोई हमारी परीक्षा नहीं चलती क्योंकि वो तो वस्तु स्वरूप का कथन है, जैसा है वैसा, बाकी भी सारा वस्तु स्वरूप ही है। परंतु हमारे जो कन्फ्यूजन चलते ना, निमित्त से कार्य होता है, परद्रव्य आएगा तो मेरा कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसके बारे में जो हमें तत्व सिद्धांत सिखाए है, उन सिद्धांतों को हम ऐसे ही है ऐसे स्वयं निर्णय करना चाहिए। देखो क्या होता है, हम स्कूल में गणित सीखते थे तो एक तो हमें गणित सॉल्व करके बताते थे टीचर, और फिर पुस्तक में बहुत सारे हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि यू हैव टू सॉल्व दिस। सॉल्व करने के बाद हम आंसर देखते थे पीछे, पुस्तक के पीछे देते हैं ना आंसर, तो हमारा आंसर और पुस्तक का आंसर बराबर नहीं होगा, मिलता नहीं होगा, तो हम क्या करते थे, फिर से देखते थे। अच्छा, और फिर भी नहीं आए तो राजेश भाई आप क्या करते थे, हाँ टीचर से पूछते थे या हमारे क्लासमेट से, तेरा आंसर बराबर आया कि नहीं है, नहीं आए तो हम फिर टीचर से पूछेंगे, और फिर भी नहीं आए तो क्या करेंगे, पुस्तक में कुछ चेंज करेंगे, क्या करेंगे। जब तक अपना आंसर पुस्तक के आंसर के अनुरूप नहीं आता है तब तक हम बार बार हमारी मिस्टेक कहाँ होती है उसको देखेंगे, फिर टीचर को पूछेंगे और फिर हमारा ठीक करेंगे। यहाँ भी ऐसा ही करना है। भगवान ने बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, भगवान ने बताया है कि इस विश्व में अनंत द्रव्य है, भगवान ने बताया कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, भगवान ने बताया कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, हमें ऐसा भासित नहीं होता है, ये हमारा जो हमारा डिसीजन है वो रॉन्ग है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब तक हमारा डिसीजन भगवान ने बताई हुई बातों के अनुसार नहीं होता तो हमें पूरा हमारा ही ढूंढना है कि हमारी मिस्टेक, हमारा अभिप्राय कहाँ क्या गलत हो रहा है। हमें वहां पुस्तक में या ग्रंथों में कुछ नहीं करना है सुधार, ये सुधार हमारे मान्यता में, हमारे अभिप्राय में, हमारे जो हम तर्क करेंगे, ये जैसे गणित होते ना वैसे ही होते सारे सिद्धांत, यह ऐसा है इसलिए ऐसा है, उसमें कोई उससे कोई अलग बात है ही नहीं। गणित जैसे 2+2 4 ही होगा, ऐसे ये जो सिद्धांत है एक सिद्धांत के ऊपर दूसरा सिद्धांत बेस्ड है, हम शुरू से ये सिद्धांत सीखते जाते हैं तो उसमें कहीं भी कोई भी गफलत नहीं होती। जैनिज्म के जो सारे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है उसके, ये जैसे कर्मबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, ये सारों के लिए द्रव्य गुण पर्यायों का बेस चाहिए, क्रम से हम उसको सीखते हैं तो सारी ही बातें हमें बराबर ख्याल में आती है। और डायरेक्ट जंप करके हम कोई बात सुनते हैं तो विरोध लगता है, वो बातें हमारे ख्याल में नहीं आती। तो द्रव्यानियोग के सिद्धांतों को परीक्षा करके स्वयं अंगीकार करना और करणानियोग के सूक्ष्म विषयों को जानकर ये अपना श्रद्धा दृढ़ करना, क्योंकि ये बातें इतनी सूक्ष्म है और इतनी परफेक्ट है, केवली के बिना अन्य कोई उसको कह नहीं सकता। अब यहां हम पर्याप्ति की चर्चा तो हो गई, जीव कहीं से मरकर आता है तो उसमें विशिष्ट शक्तियां उत्पन्न होती है, ये शक्तियां ने कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझना। शरीर की रचना करना क्यों होती है, हम कहते हैं जो नाम कर्म का उदय है तो उस उदय के अनुसार जीव परमाणुओं का ग्रहण करने का कार्य होता है। सिद्ध भगवान भी ग्रहण करते हैं ना, वहां जाने पर सिद्ध शिला के ऊपर जाने के बाद सिद्ध भगवान परमाणुओं का ग्रहण करके शरीर की रचना करते हैं कि नहीं करते है? हाँ, अशरीरी है वो, शरीर की रचना भी नहीं करते, तो हम सिद्धों से ज्यादा पावरफुल है ना, शक्तिशाली, ये शक्ति नहीं ये विभाव है हमारा, समझ में। तो उसमें भी कर्मों का निमित्त है, पुराने कर्मों का उदय चल रहा है और उसके उदय में जीव में ऐसी बातें बनती है, तो ये बनना कुछ बहुत अच्छी बात नहीं, हमने शक्ति कहा था पर्याप्ति को, परंतु वो भी विकार है, जीव का विभाव है, फिर भी वो बातें वैसी बनती है। तो ये शक्ति की डेवलपमेंट तो हुई, तो शक्ति कुछ उसमें निमित्तपने बनने की ये जो बातें बनी, अभी उसका कार्य क्या चलेगा ये तो हमने कारण देखा, पर्याप्ति जो है वे तो कारण है, उसका कार्य क्या होगा उसकी बात अभी चलेगी। ये प्राण प्ररूपणा नामक जो चैप्टर है 16वें नंबर का, हाँ 131 तीसरा पैराग्राफ, पर्याप्ति की चर्चा के पश्चात अभी हम प्राणों की बात यहां देखेंगे। प्राण ये शब्द तो हमें मालूम है, हमने कहा इसका प्राण निकल गया, ऐसा कहते कि नहीं कहते? या कहते यह प्राणी है? प्राणी क्यों कहा? जो प्राण का धारण करने वाला वो प्राणी, क्योंकि ये सारे प्राणी है, मनुष्य प्राणी है या अन्य अन्य जो कोई प्राणी है, तो ये प्राणों के धारण करने वाले है, इसके लिए उसको प्राण कहते हैं। यानी सभी जो सजीव है, सजीव किसको कहना? लिविंग बींग। परंतु जीव यानी लाइफ, और सजीव यानी जो हम कहते हैं वो शरीर देहधारी जो जिसको कहेंगे उसको हम सजीव प्राणी कहेंगे, तो ये सारे उनको हम प्राणी कहते हैं। हम कहते ना ये भूमि का क्या कहती है, ये मेरा वत्सल मेरा जीव है के प्राण है, है? तो क्या वो प्राण है अपना? बच्चे को कहते ये मेरा प्राण है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मेरे प्राण मेरे कंठ में आ गए। अच्छा ऐसा होता है क्या? माओं को होता है ना? होता है। क्यों होता है? वात्सल्य राग है, वो मेरा प्राण नहीं है, उसका प्राण जुदा है मेरा प्राण जुदा है कि नहीं? अरे बच्चे को तो प्राण कहते ही कहते हैं, और धन को उससे भी बड़ा प्राण कहते हैं। धन कलश हो जाएगा तो हाय मैं मर गया। तो हमने अपना प्राण कहाँ कहाँ रखा है देखिए जरा। देखो ये प्राण कहना कैसे है? देखो सभी प्राणी सभी जीव, जीवत्व लक्षण है ना उनमें, ज्ञान दर्शन, इसी को कहते चैतन्य, और इसी को कहते उनका भाव प्राण। तो ये भाव प्राण से रहित ऐसे कौन कौन से जीव है? हमारे पास जीवों की बहुत वेरिएशन है, हमने देखे थे एक केंद्रीय में भी निगोध है, यानी वनस्पति कायिक है, पृथ्वी कायिक वगैरह वगैरह, द्विंद्रिय तीन्द्रिय पंचेंद्रिय तक और सिद्ध भगवान तक। इसमें प्राण जिनमें नहीं पाया जाता ऐसे कौन कौन से जीव है भाई? आपको पता है पीछे एकदम बैठे ना
चंद्रकांत भाई।
अच्छा चंद्रकांत भाई बताओ प्राण से रहित कौन कौन से जीव है इनमें से? कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सभी जीव प्राण सहित है। प्राण किसको कहना? चैतन्य को। ज्ञान दर्शन जानना 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 यही प्राण है, इसको कहते हैं चैतन्य प्राण सहित सभी जीव है, भाव प्राण सहित सभी जीव है। फिर भी जहां हम ये चर्चा करेंगे अभी ये द्रव्य प्राणों की चर्चा करेंगे कि जिसके संयोग जिसको है ऐसा कहेंगे तो हम कहते हैं हाँ दिस इज लिविंग। डॉक्टर क्या करते हैं? डायग्नोस करते ना कि ये मरा है कि जिंदा है, तो उसके लिए जिसकी हम जांच करते हैं जिसके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं तो ये तो सारे द्रव्य प्राण है, उसकी चर्चा हम करेंगे। वैसे तो प्राण के बिना कोई जीव होता ही नहीं है, इसको कहेंगे भाव प्राण, और जो हम चर्चा करेंगे उनको कहेंगे द्रव्य प्राण जिनका संयोग और वियोग होता है। देखो हम यहां लिखा है चैतन्य भाव प्राण को धारण करने वाला जीव है, उसी को तो जीव कहते हैं, तो वो जीव का लक्षण ही हुआ है, उसके बिना जीव होता ही नहीं। चेतना यानी ज्ञान दर्शन रूप शक्ति, इस चेतना को ही प्राण कहते हैं। जहां चैतन्य व्यापार रुक जाता है वहां इंद्रिय और शरीर के होते हुए भी चेतना के अभाव में प्राण निकल गया, इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। कोई बीमार है तो चेतना का व्यापार यानी वहां कुछ जानने का कार्य हो रहा है ना, और वो रुक जाता है, हम क्या कहते हैं? अभी इसके प्राण निकल गए, इज नो मोर, ऐसा कहते ना। नो मोर कहां? यहां समवेयर एल्स, इज नॉट लिविंग हियर, इज लिविंग समवेयर एल्स। वो तो स्वयं लाइफ है, वो तो कभी एंड उसका हो ही नहीं सकता, परंतु जिसको हम कहते हैं वो प्राण वाला, तो जीव सदाकाल, सदाकाल करते थे फॉर एवरी मोमेंट, हर हमेश भाव प्राणों से युक्त ही होता है, प्राण विरहित कभी होता ही नहीं। हमारा जीव नाम कैसे पड़ा इसका विचार कभी किया है तुमने? देखो हमारा नाम क्या है? जीव। जीव किसको कहना? जो अनादि से जीता आया है, अभी जी रहा है और अनंत काल तक जीता रहेगा, उसको कहते हैं जीव। फिर भी जो स्वयं जीवन है उसे भला मरण की चिंता कैसे हो सकती है? हम अपना विचार करेंगे, मरने की चिंता है ना हमारे, नहीं तो अपने कोई सगे संबंधी के। तो कहते जो स्वयं जीवन है उसको मरण कैसे हो सकता है? परंतु इस जीव का दुर्भाग्य तो देखो, यह जीव ऐसा बुद्ध है कि मरण के भय से ही मरा जा रहा। आपको पता नहीं है डॉक्टरों के पास लाइन किससे आती है कि मरण तो एक बार होता है परंतु मरण की चिंता सतत चलती है ना? और इसीलिए डॉक्टरों के पास ज्यादा, ये ट्रेड सीक्रेट है, बताना नहीं किसी को। आकुलता है ना, उस आकुलता के कारण आते हैं लोग। बीमारी से इतने परेशान नहीं होते हैं जितनी परेशान अभी मुझे क्या होगा इस भय से आते हैं, और वो भय का तो इलाज करते हैं। अब क्या क्या चिंता होती है उसके, शरीर के बिना मैं कैसे रह सकता हूं, इसने क्या माना यही मेरा अस्तित्व है, और जीव को रहने के लिए शरीर की जरूरत है कि नहीं है? आप क्या कहते हैं, जीव जुदा है शरीर जुदा है? अभी हमने देखा ना, एक भाव से अन्य भाव में जाता है, वहां फिर कुदगल इकट्ठे होते हैं और शरीर बन जाता है, फिर उसकी आयु समाप्त होती है, वहां से निकलकर और अन्यत्र जाता है, फिर इकट्ठे होते हैं कुदगल परमाणु, फिर शरीर बन जाता है। ऐसे करते करते जब यह अरिहंत होकर सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है, जीव इन प्योर फॉर्म, अभी उसके कोई शरीर की रचना आदि कुछ नहीं होती है। यानी जीव को रहने के लिए यदि शरीर की जरूरत होती तो सिद्ध भगवान तो अनंत है और वो अनादि से ही है और अंतकाल तक वैसे उसी पर्याय में रहने वाले हैं। ये जो मान्यता है कि मुझे टिका रहने के लिए शरीर की जरूरत है, ये बिल्कुल झूठ मान्यता है। दूसरी बात, मुझे जीने के लिए हवा जल अन्न आदि की जरूरत है और उसके कारण मेरा अस्तित्व टिका हुआ, तो मैं स्वयं जीव हूं, अन्य भी द्रव्य है, उनका अस्तित्व क्यों टिका है? बोलो, हम खाते हैं तो अस्तित्व है कि नहीं है ना? हाँ, आप क्या कहते हैं, निर्णय करना पड़ेगा। तो आपने स्वयं उत्तर दिया, सिद्ध भगवान खाते नहीं है। अब नरकों में तो इतनी भूख लगती है कि तीन लोग का अनाज खा जाए और वहां कुछ खाने को नहीं मिलता है। कितने सागरों तक रहते हैं, 33 सागर तक मैक्सिमम आयु वहां की, खाए पिए बिना। अरिहंत भगवान की बात करेंगे, केवल ज्ञान किसी को होता है अर्लीएस्ट मैक्सिमम लाइफ कर्मभूमि के पूर्व कोटि वर्ष की, करोड़ पूर्व, एक पूर्व का याद है कितना काल है, भूल गए, 84 लाख × 84 लाख वर्ष, यानी 70,56,000 करोड़ वर्ष। इतने में से 8 वर्ष के बाद किसी को वो मुनि अवस्था भी धारण करता है, केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने के पश्चात कोई आहार नहीं है, 7वें गुणस्थान से जीव को आहार नहीं होता है, कोई भोजन नहीं होता। कितने 1 करोड़ पूर्व तक बिना भोजन के। तो हमने क्या माना, हम भोजन लेते इसलिए जिंदा रहते हैं, ख्याल है ना? वो शरीर के परमाणुओं का ग्रहण वहां भी चलता है क्योंकि वहां नाम कर्म का उदय है, कोई भोजन नहीं है। क्यों, ये भोजन की इच्छा कब होती है, जब असाता वेदिनी की उदीर्णा होती है। और वेदिनी कर्म की, देखो हर कर्म का उदय कहां तक होता है, उदीर्णा कहां तक होती है, कर्णानियोग के नियम है, उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है वेदिनी की। आप कहते ना मुझे 7 घंटे के बाद भूख लगती है, 7.5 घंटे में नहीं लगती, तो तभी कैसे लगती है, उदीर्णा होती है उस समय। ये आगे बात आने वाली संज्ञा वगैरह ना, कौन सी संज्ञा, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये संज्ञा कहलाती है, कौन सी संज्ञा कहाँ तक है वो वहां बताएगी। तो 6ठे गुणस्थान तक ही वेदनी की उदीर्णा हो सकती है। तो असाता वेदनी जो कर्म है, क्षुधा कैसे लगती है, भूख या प्यास कैसे लगती है, तो असाता वेदनी का तीव्र उदय, जब जिसको उदीर्णा, उदीर्णा किसको कहना है, उदय ने एक 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 उसका एक एक निषेक खेलता है, और उदीर्ण ने वो भविष्य काल में पड़े हुए निषेक बहुत सारे जल्दी उदय में आते हैं। जैसे हमारा क्यू चल रहा है, क्यू में तो लोग है ही, हमारे क्या होता है इंडिया में, हमारे पहचान वाले कोई दूसरे तीसरे नंबर पर है तो हमारी लाइन हम छोड़कर उसके साथ मिल जाते हैं। ऐसे भविष्य के कुछ परमाणु जल्दी उदय में आते हैं तो उसको कहते हैं उदीर्णा। तो ऐसी उदीर्णा होती है वेदनी साता वेदनी की, तब भूख लगती है। हम बच्चे भी हम देखते हैं तो ये बच्चे भी कुछ खेलते रहते हैं, हम चलो चलो खाना खाओ, खाना खाने को चलो, भूख नहीं है मम्मी। अभी दो मिनट गए, मम्मी मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, तो इतने में क्या हुआ उसको? तो ऐसे जो कर्मों की स्थिति होती है, उदीर्णा होकर भूख लगना, ये छठे गुणस्थान तक ही होता है कार्य, सातवें गुणस्थान में नहीं, आठवें में नहीं, ऊपर तो नहीं ही नहीं, तो तेरहवें गुणस्थान में भी नहीं होता है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि मुझे जीने के लिए जल चाहिए, ये तो हमारी मिथ्या मान्यता है। हवा के कारण हम जी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं वो बात आएगी कि प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, और वो सत कहे ना, सत द्रव्य लक्षणम, तो सत तो हम तो हवा यानी अन्न से जीते हैं, ये पुद्गल क्यों अनादि से अनंत काल तक टिका हुआ है? वो क्या खाता होगा? धर्म द्रव्य क्यों टिका हुआ है बोलो? अधर्म द्रव्य वो कुछ खाता होगा? वो द्रव्य है तो टिकेगा, तो अजीव द्रव्य तो बिना खाए टिकता है, और जीव द्रव्य वो खाने से टिकता है। जीव द्रव्य क्या खाता है? पुद्गल को खाता है, इसलिए टिका है। अपनी मान्यता सुधरनी होगी, वो न्याय से बात करना है, लॉजिक से बात करना है। तो ये हमारी जो मान्यता है ना, तो हम कल से खावे के नहीं खावे, अरे वो ये क्रिया को बीच में क्यों लाते हैं? पहले सिद्धांत तो सीखो, पहले में पहले कि हम कौन सा द्रव्य है। जब हम जीव द्रव्य की बात करते तो आप मनुष्य की बात बीच में लाते, मनुष्य को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हम यहाँ जीव द्रव्य की बात करें, जैसे हमने पहले बताया था H2O यानी वाटर। जब हम वाटर के गुणधर्म देखते हैं तो कुछ अलग है, जैसे वो द्रव रूप है, जलते हुए को बुझाता है, और जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे तो हाँ, अरे वो तो जल जाता है और जलाता है ना, जलने में मदद करता है, वायु रूप है। तो हम जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसके गुणधर्म समझो, और जब पानी की बात करेंगे तो उसके गुणधर्म, जब हम मनुष्य की बात करेंगे तो उसकी क्रियाओं की बात करेंगे। अभी हम मनुष्य की बात नहीं करें, हम जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो पहले में पहले उसको सीखना पड़ेगा, ख्याल है ना। तो हम स्वयं जीव द्रव्य है, तो हमें टिकने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो हम अनादि से अनंत काल तक टिकने वाले ही है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, ये पहले निर्णय करना है। फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि हम जीव में से एकदम मनुष्य बन जाते हैं। फिर जीव बने बने रहो, ये बार ये बारदान है ना, उसकी चिंता छोड़ दो। तो देखो, मुझे जीने के लिए हवा जल अन्न आदि की जरूरत है, और उनके कारण मेरा अस्तित्व टिका हुआ है। इस तरह यह जीव मानता आ रहा है, ये मानता है, ये उसकी भूल है, ये मिथ्या भ्रमणा चल रही है। वो कैसे मिटेगी? तत्व ज्ञान के अभ्यास। तत्व ज्ञान का अभ्यास ही ऐसा अभ्यास है कि सभी भ्रमणा का बिल्कुल नाश करने वाला है। हे जीव, सिद्ध भगवान है या नहीं? वे तो अनंत काल तक अशरीरी रहते हैं, फिर भी अनंत सुखी है, अनंत ज्ञानी है। ये हमने देखा था, अरिहंत भगवान के भी चार अनंत बातें प्रकट हुई है, चार है ना, इसलिए हम चतुष्टय कहते हैं, जिसका नाम है अनंत चतुष्टय। अभी यहाँ इस बिल्डिंग में कितने अरिहंत भगवान विराजमान है, उनके कौन से है अनंत चतुष्टय? हम तो नमस्कार करके आए सब, कौन बताना चाहता है? पीछे कोई अनंत चतुष्टय किसको कहना, जो अरिहंतों को भी है और सिद्धों में भी चलता रहता है? आप कहेंगे बहन? नहीं, हाँ बोलो, कौन बता? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ देखो देखो, हाँ अनंत चारित्र के बदले हम दूसरा शब्द अनंत सुख। हाँ देखो, कौन से? अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान, जिसको क्षय ज्ञान भी कहते, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। देखो, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनके सामने जाके दर्शन लेते हैं, तो हमें ये सारे उनमें दिखाई दे तो हमने दर्शन किया, ख्याल है ना। देखो, हम हमारे घर में हमारे पिताजी के या कोई बड़े बुजुर्गों के, हमारे दादा दादी के फोटो देखकर हमें उनकी याद आती है, उनका प्यार याद आता है, उन्होंने हमारे लिए कितने कष्ट किए वो याद आते हैं। तो हम देखते हैं तो हमारे हाथ हम जोड़ देते हैं और हमें आंख में आंसू भी आते हैं कभी कभी। तो हमारे साथ हमारे कोई फ्रेंड आए हमारे साथ तो हमने हाथ जोड़े तो उसने भी हाथ जोड़े, तो उनके उनको गुणों का उनको परिचय है कि नहीं है? नहीं है। वैसे ही हम जब अरिहंत भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो क्या हम उनके गुणों से परिचित है कि नहीं है? नहीं तो हमने क्या देखा था बचपन में, हमारी माँ उनके हाथ जोड़ते थे, हमने भी हाथ जोड़ लिया है ना, वो भी कुछ स्तुति गाती थी हमने भी स्तुति गाई। तो इस तरह से हमें नहीं करना, हमें तो उनके गुणों का परिचय करना है। तो वितरागी सर्वज्ञ है और उनमें वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, और ऐसा ही हम भी प्रकट करना चाहते। वो तो हमारा रूप है, हमारा स्वभाव बता रहे हैं। हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं यहाँ मंदिर में आकर, ये इतनी मूर्तियां वगैरह क्यों स्थापित करते हैं? हमें याद दिलाने के लिए कि ये हमारा स्वभाव है, हमारे में से प्रकट होने वाला। बहन जी सुबह दर्पण के सामने क्यों जाती हो आप? मैं भी जाती हूँ, आप बताना क्या देखते हैं? हम मुंह देखने, दर्पण क्या बताता है? ये तेरा है ऐसा रूप है ना। दर्पण के सामने, दर्पण का एक नाम है आदर्श, मालूम है कि नहीं? कोई संस्कृत जानने वाले जानेंगे आदर्श, दिखाने वाला आदर्श, मिरर मिरर, वो क्या बताता है? ये तू ऐसा है बताता। तो मुंह में दाग लगा है मेरे, तो दर्पण के सामने जाकर मैं दर्पण पहुंचती हूँ ना, आप क्या करते हैं? मुंह पूछते? अच्छा, दर्पण हमारा बताता है कि ये तेरा ऐसा मुंह है, तो हम यहाँ पहुंचते हैं काला होगा है ना। तो भगवान के सामने हम जाते हैं तो वो हमारा असली रूप बताते हैं, अंदर वाला। देखो हम एक्सरे निकालते हैं तो क्या ऊपर की चमड़ी नहीं बताते कितना काला गोरा है, तो अंदर हड्डियां कैसी है क्या है वो बताते। यहां हम भगवान के सामने जाते हैं वो क्या बताते हैं? ये तेरा शुद्ध स्वरूप ऐसा है। वो शरीर का फोटो नहीं निकालेगा, वो अंदर की बात बताते, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सभी जितने गुण है ना, ये ऐसा तू है। इसीलिए हम उनको भी आदर्श कहते हैं, दिखाने वाले ना, हमारा असली रूप बताते हैं। तो उसका असली रूप देखकर हमें अपने स्वभाव की पहचान होना चाहिए, तब हम कहेंगे हमने भगवान का दर्शन किया। तो फिर हमें भगवान के प्रति बहुत आदर होता है, तो हम उनकी भक्ति भी करते। तो यहाँ ये बात चल रही थी कि जो सिद्ध भगवान है वो अनंत ज्ञानी, अनंत सुखी है। हे जीव, तू भी तो अशरीरी ही है, मैं जीव द्रव्य हूं। तो जीव द्रव्य को कितने शरीर होते हैं? मेरा प्रश्न सुनना, फिर बाद में मत कहना मैंने कुछ अलग पूछा था। जीव द्रव्य को कितने शरीर होते हैं? शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो मैंने पूछा जीव द्रव्य को कितने शरीर होते हैं? शरीर पूछा मैंने, कोई शरीर नहीं, क्योंकि हम जीव द्रव्य बता रहे हैं। पुद्गल द्रव्य जीव से भिन्न है कि नहीं, समझ में आता है? देखो हम अभी संसारी जीव है, और फिर निमित्त की भाषा में कहना है तो तन्म से बंधे हुए हैं। फिर कहेंगे ये मनुष्य जीव है, उसके कितने शरीर है, फिर हम गिनेंगे। अरे एक अवतारिक शरीर है, एक तेजस शरीर है, एक कारमा शरीर है। पर हम जीव द्रव्य की बात करें, जीव द्रव्य को जीव जीव द्रव्य है और पुद्गल पुद्गल द्रव्य, दो भिन्न द्रव्य, यही एक ही स्पेस में दोनों ही इकट्ठे रह रहे। फिर हम उसको इकट्ठा जानकर कहेंगे ये दोनों की मिली जुली ये मनुष्य पर्याय है। जीव को कोई शरीर नहीं है, तो मैं स्वयं अपने को क्या माना मैंने? हमने अपने को आज तक शरीर ही माना है, कभी जीव माना ही नहीं। तो मैं भी स्वयं अशरीरी हूं। हम कहते हैं अरे नहीं, हम तो ये शरीर वाले हैं, काले हैं, गोरे हैं। अरे वो तो भगवान अशरीरी होते हैं, परंतु हमने अपने को जीव द्रव्य, इस जीव ने आज तक छह द्रव्य को माना ही नहीं। छह द्रव्य की बात छोड़ो, जीव और पुद्गल दो द्रव्यों को भी इसने अभी तक जाना नहीं, माना नहीं है। शरीर को पुद्गल और मुझको अपने को जीव मानता तो ये सारी उसकी उलझने दूर हो जाती। तो हे जीव, तू भी तो अशरीरी है, तेरी सत्ता, सत्ता यानी अस्तित्व, तेरे तेरा अस्तित्व तेरे में है। हमने देखा ना, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में होता है। वो द्रव्य का अपना स्वचतुष्टय है, तो अपना अस्तित्व अपने में है। यहाँ इस क्षेत्र में मेरा अस्तित्व मेरे में, और ये शरीर का अस्तित्व शरीर में है। दो भिन्न भिन्न अस्तित्व एक जगह रहते हैं, सुपरइम्पोज है, तो हम कहेंगे वो एक क्षेत्रावगाही है। तो तेरा अस्तित्व तेरे में है, तेरे अपने कारण वह कायम है। तो मेरा अस्तित्व पुद्गल के कारण टिका है ना, कि खाने पीने से टिका है? बोलो, अपने आप टिका है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य ही अनादि अनंत है, और अनादि अनंत टिका रहता है। उसको टिकाए रखने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, और ना ही उसको परिणमन करने के लिए किसी अन्य की जरूरत है। हमने अभी तक उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणों को नहीं माना, तत्वार सूत्र को तो माना, परंतु उसमें इतना जो बेसिक प्रिंसिपल बताया है वो हमारे ख्याल में नहीं आया, क्योंकि हमने विचार नहीं किया। तो तेरी सत्ता, तेरा अस्तित्व तेरे में है, तेरे अपने कारण वह कायम है। और यह अस्तित्व कैसा है जीव का? चैतन्यमय है। पुद्गल का अस्तित्व कैसा है? अचेतन है, जड़मय है। और मेरा अस्तित्व चैतन्यमय है। शरीर का अस्तित्व भिन्न है, अचेतन है। और ये चेतन और अचेतन, ये पदार्थ इसी एक क्षेत्र में रह रहे, एक साथ रहते हैं, परंतु इस कारण चेतन अचेतन नहीं हुआ है, और ना अचेतन चेतन स्वरूप हुआ है। अपने अपने में वो अपने अस्तित्व में कायम टिके हुए हैं। तू तो एक जीव द्रव्य। देखो, ये जीव का और शरीर का दोनों का यहां बात बताइए, पहले भी एक बार बात आई थी। यहां ऐसा समझना, मैं तो एक जीव द्रव्य, अब यहां अन्य जीव को समझा रही हूं ना, इसलिए मैं तू तो एक कहा। तू तो एक जीव द्रव्य, एक उसकी लक्षण हमारा समझा रहे। मैं कौन हूं? जीव द्रव्य। कितने हैं मैं? मैं तो एक ही होता है, मैं दो चार नहीं होते। इतने कितने यहां, कितने मैं बैठे हैं? सब अपना एक मैं है ना। कल हमने ऐसे पूछा था, इस विश्व में जीव तत्व कितने हैं? तो जीव द्रव्य है अनंत। मेरे लिए जीव तत्व कितना है? मैं, जिसको मैं आत्मा है, आत्मा है स्व। तो स्व कितने अपने लिए? एक है ना। कल माता की बात आई थी ना, हमारे लिए जन्म देने वाली कितनी माता है इस विश्व में? एक। तो ये सारी माताएं मेरे को फाइट करने आई। क्या हम माता नहीं है? हाँ, पर मेरे लिए इस विश्व में एक ही माता है। उसमें कोई आपकी नाराजी है? आप अपने अपने बच्चों की माता, आप माता नहीं वो बात नहीं है, परंतु मेरे लिए माता एक ही है। ऐसे ही मेरे लिए मैं एक ही हूं, मेरे लिए बाकी सब पर है। मैं एक और मेरे अलावा ये आप सब जीव क्यों पर? इतना वो सरल है। तो यहां कहते हैं, तू तो एक जीव द्रव्य। दूसरा लक्षण, चेतना गुण का धारी, अरूपी, संकोच विस्तार वाला, असंख्यात प्रदेशी। अभी जो संसार अवस्था में है तो संकोच होता है, छोटे शरीर धारण करता है, कभी निगोद हुआ, कभी एकेंद्री हुआ, कभी द्विंद्री हुआ, और कभी पंचेंद्री हुआ, हाथी हुआ, कभी महामत्स्य हुआ। तो संकोच विस्तार है। आत्मा के प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते। जैसे एक स्पंज हमने मुट्ठी में दबा दिया तो उसका मैटर कुछ कम नहीं हुआ है, सब्सटेंस उतना ही रहा। वैसे आत्मा कितना भी छोटे शरीर में चला जाए तो भी वो उसके प्रदेश उतने ही कायम रहते हैं, और पूरे फैल जाए तो लोकाकाश समान बड़े हो, केवली के इतने बड़े हो जाते हैं। इसलिए कहा संकोच विस्तार वाला, असंख्यात प्रदेशी है। और शरीर क्या है? शरीर तो अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, एक द्रव्य नहीं, शरीर एक द्रव्य नहीं है। ये शरीर में तो अनंतानंत पुद्गल परमाणु है, जो अचेतन है, रूपी है। रूपी का अर्थ क्या है भावेश? हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो रूपी है। और कैसा है? गलन मिलन क्रिया से युक्त है। गलना क्या है और मिलना क्या है, अभी आपने पुद्गल देखा, पुद और गल, जुड़ना और गलना, गलना यानी वो बिखर जाना और मिलना ये जो बूंदी बनाई आपने, तो अलग अलग है। और फिर उसको दबा दबा के लड्डू बना दिया है ना, तो मिल गए और फिर तोड़ दिया तो बिखर गए। उसमें निरंतर अनंत परमाणु आते जाते रहते हैं। अरे बाबा, इस अचेतन के संयोग को तूने स्वयं का जीवन मान लिया। हम कहीं से मरकर आए हैं, यहाँ आए हैं और इस अचेतन पुद्गल परमाणुओं का संयोग हुआ, उसकी शरीर रूप रचना हुई। जानने को जानने वाले तो हम स्वयं, परंतु यहाँ इंद्रियों की भी उसमें निमित्तपना बनता है। तो हम मिल गए, आंखें ही देख रही है, कान ही सुन रहे हैं, हमने अपना अस्तित्व घुमा कर ये शरीर को ही मैं मान लिया। तो कहते इस अचेतन संयोग को तूने स्वयं का जीवन मान लिया। इस शरीर का संयोग होने पर मैं जन्मा और वियोग होने पर मैं मरा मान लिया। किसने माना? जीव ने। जो अभी तक तो जीव मैंने वो जीता ही आया है, कभी मरा ही नहीं। पूरी दुनिया का निर्णय करने वाला यह सयाना स्वयं के बारे में कभी सोचने के लिए भी राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ वेरी बिजी है, हमें अपने बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है इस दुनिया में, दुनिया के लिए। क्यों बहन, सच है ना? हमको सब करना है कि नहीं करना? हमको व्यापार करना है, जॉब करना है, पैसे कमाना है, बच्चों का संभालना है, परंतु हमें अब मैं कौन हूं इस बारे में सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। शरीर की उपस्थिति में जानने का कार्य तो जीव स्वयं ही करता है। इंद्रियां तो अचेतन है, पुद्गल है। हम कैसे जान सकते हैं? ब्रेन से जानते हैं ना, हा? ब्रेन पुद्गल है, दिखाई देता है ना, इट्स लाइक अ मशीन, लाइक अ कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर जानता है कि आप जानते हो? वो तो मशीन है, यंत्र है, हाँ? बंद हो जाता है, हाँ। तो इंद्रियां तो अचेतन है, पुद्गल है। कुछ प्रश्न है? नहीं। परंतु जानने के काल में उनकी निमित्त रूप से उपस्थिति रहती। क्या रहता है? उपस्थिति। उपस्थिति यानी प्रेजेंस। अब ये चश्मा की यहाँ उपस्थिति है, ये मैं निकालू तो थोड़ा स्पष्ट दिखता है, पढ़ने के लिए मुझे तकलीफ होती है, तो ये पढ़ने का काम कर रहे हैं ना। तो मुझे बहुत नींद आई तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, अभी थोड़ा तू पढ़, मैं थोड़े सो गई। नहीं चलेगा बहन? ना करती। इसमें तो हम बहुत सयाने हैं। परंतु हमने क्या माना, ये आंखें ही देखती है ना। इंद्रिय देखो क्या क्या अचेतन है। देखो ये सारे जो हम द्रव्य प्राण देखने जा रहे हैं, द्रव्य प्राण कहा नहीं है, पुद्गल की कुछ रचना है, और उसमें जीव क्या करता है? तो जीव तो जानने का कार्य कर, जानने वाला जीव है, तो जानता है। परंतु इसके यहाँ किस किस के निमित्त यहाँ बीच में पड़े है, उसकी अपेक्षा से यहाँ उसको द्रव्य प्राण कहा है। अकेले जानन रूप जो कार्य है उसको भाव प्राण कहा, और यहाँ जिन निमित्तों से यहाँ शरीर की वहां संयोग है और वहां जानने के निमित्त वहां पड़े हैं, और उसके निमित्तों से जो जानता है उसको यहाँ द्रव्य प्राण कहे। फिर वो द्रव्य प्राण नहीं रहेंगे तो हम कहेंगे इज नो मोर। हम देखते तो उसी को ही ना, तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या है। इंद्रिय, मन, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास आदि के कार्य को मन को प्राण नहीं कहा है, ना ही शरीर को प्राण कहा, ना ही इंद्रियों को प्राण कहा। इंद्रियों के द्वारा जो जानने का कार्य होगा उसको इंद्रिय प्राण कहा। मन के द्वारा जो जानने का कार्य होगा, मन इज अ पुद्गल, जैसे शरीर पुद्गल है वैसे मन भी पुद्गल है, वाणी भी पुद्गल है, परंतु वाणी के उत्पन्न होने में जो जीव का वहां कुछ कार्य चलता है उसको वहां वचन प्राण कहेंगे। ऐसे ही मन प्राण, तो ये प्राणों की यहाँ चर्चा चलेगी, इसको कहेंगे द्रव्य प्राण। तो द्रव्य प्राण है कितने और कौन से जीव को कितने प्राण है, उसकी अभी यहां अपनी चर्चा चलेगी। तो यहां हम देखते हैं संगी पंचेंद्रिय जीवों के कुल 10 प्राण होते हैं, उसमें में 4 ग्रुप करेंगे हम, वो किसके है उसकी बात हम बाद में करेंगे। प्राणों के 4 ग्रुप है, एक है इंद्रिय प्राण, दूसरा है बल प्राण, तीसरा है श्वासोच्छ्वास प्राण और चौथा है आयु प्राण। यहां लिखा है बोर्ड पर, कौन पढ़ के बताएंगे हमें कि 4 हमने बातें देखी, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण। हाँ पीछे कोई बताएगा बहनों में, नहीं तो भाई तैयार बैठे हैं यहाँ पर, आज वो सर्वोत्तर भाइयों से मिल रहे हैं। हाँ कौन कहना चाहता है, बोलो राजेश बोलो, आपको पढ़ना है केवल यहाँ से। हाँ
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 प्राण।
बहुत अच्छा, तो ये 4 नाम हमने देखे हैं, तो ये कौन कौन से हैं? तो इंद्रिय प्राण हमें मालूम है, 5 इंद्रिया कौन कौन सी है, हाँ कौन सा है अभी ये आप 5 नाम बताओ भूमिका। हाँ स्पर्शन इंद्रिय प्राण, सभी पूरा प्राण तक बोलना चाहिए, अकेले हम स्पर्श रस गंध वर्ण कहेंगे तो पुद्गल के गुण हो जाएंगे, अकेले स्पर्शन इंद्रिय रसन इंद्रिय घ्राण इंद्रिय कहेंगे तो ये द्रव्य इंद्रिया हो जाएगी, और हमें द्रव्य इंद्रियों की बात नहीं, द्रव्य इंद्रिय प्राण की बात चल, उन इंद्रियों के द्वारा जो जानने का कार्य उसको प्राण कहेंगे। तो हमें पूरा नाम बताना है स्पर्शन इंद्रिय प्राण। हाँ बोलो अभी
स्पर्शन इंद्रिय प्राण,
और श्रोत्र कहो या कर्ण कहो एक ही बात है, कर्ण इंद्रिय प्राण। हाँ ये मैंने ऐसा अलग अलग इसे हम ऐसा भी कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय, इसका जोड़ कर बताते ना, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय कहो एक ही बात है। तो ये 5 इंद्रिय प्राण हुए। बल प्राण के नाम बोलेंगे बेन सुष्मिता बेन, मन बल, काय बल प्राण, वचन बल प्राण और मन बल प्राण, ये 3 बल प्राण हुए, उसके अर्थ भी हम देखेंगे बाद में। एक है श्वासोच्छ्वास प्राण और एक है आयु प्राण। अब ये जो 10 प्रकार का कार्य है ना, कुछ कार्य हो रहा है वह जीव का, उसको यहाँ कार्य को ही व्यापार कहते हैं और उसी को यहाँ द्रव्य प्राण कहा। कौन सा व्यापार, जानने रूप जो कुछ है या जो वचन रूप जो कुछ कार्य चल रहा है उसको यहाँ कार्य या व्यापार या द्रव्य प्राण कहा। और इंद्रियावरण के क्षोभन से होने वाली, अभी उसको भूल जाओ, भाव प्राण कहते हैं। अब यह क्या कहते हैं, इसमें हम थोड़ा निमित्त भी देख लेंगे, कर्मों का निमित्त देखेंगे। जिसको 5 ही इंद्रिया है, इंद्रिय ज्ञान है ना, तो इंद्रिय ज्ञान है उसको हम दूसरा नाम देते हैं तो क्या कहेंगे हम, मति ज्ञान। आपने सुना है सबको, मति ज्ञान किसे कहते हैं, 5 इंद्रिया और मन। अब जिसको जितने इंद्रिया होगी, जिसको जो मन होगा या नहीं होगा, उसको उनके द्वारा जो ज्ञान होता है उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान होने में कौन सा कर्म का निमित्त है वहां पर, तो हम कहेंगे मति ज्ञानावरण, उसका क्षोभ, उसकी विशिष्ट अवस्था यानी ज्ञान का उघाड़ है, उस कर्म का उसमें निमित्त है। अब यहां भी वो शरीर नाम कर्म का उदय है, स्वर नाम कर्म का उदय है, इसमें मन बल प्राण में मन को 9 इंद्रिय भी कहते हैं तो इसको 9 इंद्रियावरण का उदय है, श्वासोश्वास प्राण में श्वासोश्वास नाम का उच्छ्वास का नाम कर्म होता है उसका उदय पाया जाता है, और आयु तो मालूम है आपको, आयु नाम का जो कर्म है ना अघाती में, वेदनी आयु नाम और गोत्र, ये 4 कर्म है, उसमें आयु कर्म के उदय में जीव की विशिष्ट आयु चलती है उसको हम आयु प्राण भी कहेंगे। तो ऐसे ये जो प्राण है अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे। कितने बजे तक लेना है? 3 बजे तक। द्रव्य प्राण के उत्पन्न होने को हम जन्म और उसके नाश को हम मरण कहते हैं। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के 10 प्राण होते। अभी ये पर्याप्त पर्याप्तों के प्राण हम गिनेंगे। पहले हम पर्याप्तों के प्राण गिनेंगे, थोड़ा विचार करेंगे। संगी पंचेंद्रिय जीव है, आप उनके कितने प्राण हो गए इसकी चर्चा करनी है। संगी पंचेंद्रिय ने जिसको 5 इंद्रिया और मन होता है, तो उनको इसमें से कितने कितने प्राण होते हैं हमको ट्राई करना है। बेन आप बोलोगी? हाँ, आपके पीछे लता बेन के पीछे बैठे ना। हाँ बोलो बेन, बोलो। हाँ, आपको ऐसा गेस करना है। हाँ, सब प्राण होते हैं। इंद्रिय प्राण कितने हैं? 5 है। बल प्राण 3 है और आयु प्राण। तो संगी पंचेंद्रिय जीवों को 10 प्राण होते हैं। ये बात आसान है ना? तो हम पूछते हैं, असंगी पंचेंद्रियों को कितने हो गए प्राण? भाई आप कहेंगे हाँ हाँ। वेरी गुड, यू शुड आस्क सच क्वेश्चन। संगी का अर्थ होता है मन सहित, मन वाले जी, जो 5 इंद्रिया संगनी कहे, गुजराती में संगनी कहवा, संगनी शू कहो छो तमे? संगनी इंग्लिश, दोज हु आर विथ माइंड एंड दोज हु आर विदाउट माइंड
आर असंगनी।
ये तो असंगी, एक इंद्रिय बता तो विदाउट माइंड है, पर पंचेंद्रिय में विदाउट माइंड प्राणी हो छे। 5 सेंसरी छे, पण एमां तो प्राण मन नथी, माइंड नथी, एवा पण पंचेंद्रिय जीवो होय छे। तो उनको मन नहीं है, बाकी 5 इंद्रिया है। तो उनके प्राण कितने हो गए? 5 इंद्रिया है। ओके, इसमें मन नहीं है तो ये 2 है, श्वासोश्वास है, और आयु तो है, सभी को होती है, तो कितने हो गए? 9 प्राण हो गए। अब मैं पूछूंगी 3 इंद्रिय वालों को कितने हो गए? कौन बताना चाहता है? बोलो जैनाबेन, बोलो। 3 इंद्रिय वालों, इंद्रिय प्राण कितने हो गए? हाँ बेन आप बोलना। हाँ 7। कैसे? 3 इंद्रिय प्राण, 2 बल प्राण, 3 2 5 हुए, श्वासोश्वास, आयु। कितना आसान है, लोग करना नहीं, उनसे खाली भी नहीं डरते हैं। तो 7 हुए। द्विइंद्रियों को कितने हो गए? बोलो श्रुति, बोलो, आप काम करो। 2 इंद्रिय प्राण। हाँ हाँ, द्विइंद्रिय जीव को वचन बल होगा कि नहीं होगा? हमने कहा, क्या कहा? जिसको रसने इंद्रिय है इसको वचन है। छह हो गई ना? देखो, 2 इंद्रिय प्राण, 2 बल प्राण, श्वासोश्वास और आयु। अब एक इंद्रिय के प्राण बताओ, क्या नाम इनका?
सोमिल जी।
हाँ बताओ। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास, आयु। कितना आसान है ये, हमने तो पर्याप्त जीवों में देखा हो, अपर्याप्तों की बात ही नहीं की हमने। तो अपर्याप्त में क्या होता है? अभी हमने पर्याप्तियों के नाम देखे थे। पर्याप्त यानी क्या? कुछ शक्तियां उत्पन्न होती है कि ये कार्य कर सके। हमने क्या देखा था? पहले आहार पर्याप्ति होती है, फिर शरीर पर्याप्ति होती है, फिर इंद्रिय पर्याप्ति होती है, और फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति होती है। जिसकी श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उसको श्वासोश्वास प्राण यानी वो कार्य शुरू नहीं होता। पहले शक्ति होगी ना, श्वासोश्वास करने की शक्ति पूर्ण होगी तो जीव श्वासोश्वास करेगा। श्वासोश्वास यानी वो टिश्यू लेवल पर जो कोई ऑक्सीजन इनटेक आउटटेक जो कुछ होता है उसको श्वासोश्वास कहना। तो ये किसके होगा? पर्याप्त जीवों के होगा। अपर्याप्त जीवों को श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा। एक बात, जिसके भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है ऐसे अपर्याप्त जीवों को वचन बल प्राण नहीं होगा, अपर्याप्त अवस्था में उसके कोई वचन की बात नहीं होगी और मन बल प्राण भी नहीं होगा, भले वो संगी जीव होगा तो भी। संगी पंचेंद्रिय जीव है और वो अपर्याप्त अवस्था में है तो उसके ना वचन बल प्राण होगा, ना बल प्राण होगा, सॉरी मन बल प्राण होगा और ना ही श्वासोश्वास प्राण होगा। तो अभी हम फिर पूछेंगे संगी पंचेंद्रिय जीवों में पर्याप्तों में हमने 10 प्राण देखे थे, अभी हमें अपर्याप्तों में देखना है। कौन कहना चाहते हैं? हाँ आप कहेंगे सीधे में सात कैसे? पांचों को आप डायरेक्ट बोलना, पांच इंद्रिय प्राण, पांच इंद्रिय प्राण, ये नहीं है, ये श्वासोश्वास नहीं है, काय बल प्राण होता है। काय बल प्राण क्यों? क्योंकि वहां शरीर का ग्रहण, शरीर के परमाणुओं का ग्रहण और उसको शरीर रूप ढालना, ये कार्य वहां चल रहा है अपर्याप्तों में भी। परंतु वचन बल क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं है। मन बल क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी मनोपर्याप्ति पूरी नहीं है। श्वासोश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वो श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। फिर से दोबारा, काय बल तो पहले समय से ही होता है क्योंकि शरीर के परमाणु को ग्रहण करना और उसको खल रूप रस रूप परिणमाना, ये कार्य उसका पहले ही समय से चलता है, इसलिए काय बल प्राण तो सबको होगा। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के सभी को ये होगा, हाँ दोनों अवस्था। परंतु वचन बल और मन बल कब होगा? पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त में। तो अभी हमने देखा संगी पंचेंद्रियों को पर्याप्त अवस्था में 10 प्राण और अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण। अब मुझे बताओ असंगी पंचेंद्रियों को पर्याप्त अवस्था में हमने 9 देखे थे तो अपर्याप्त में कितने हो गए? 6 नहीं बोलो श्रुति, हाँ गीता बेन बोलो, 7 ही हो गए। क्यों? क्योंकि उसको तो मानो पर्याप्त वैसे भी होने ही वाली नहीं है, ख्याल है ना? फिर से संगी को पर्याप्त में 10 और संगी को अपर्याप्त में 7, असंगी को पर्याप्त में 9 और असंगी को अपर्याप्त में 7, बराबर। अभी चतुर इंद्रिय में अभी एक एक इंद्रिय कम करना है उसका, अभी हमने वहां 7 देखे, 9 और 7 देखे, ऐसा हमने याद करना है, 10 और 7, 9 और 7, अभी उसके आगे क्या होगा? 8 और 6। चतुर इंद्रियों में 8 हो गए, यहां 4 पर्याप्त में, ये 4, ये 2 6 और ये 2 8, उसमें से हमको अभी ये 2 कम करने हैं, मन तो वहां होता ही नहीं है, तो उसके 8 और 6 हो गए। 3 इंद्रियों में आपने पर्याप्त में 7 बताए थे ना, 3 इंद्रियों में पर्याप्त में 7, तो 3 इंद्रियों में अपर्याप्त में कितने हो गए? हमें 2 कम करना है, 5 हो गए। द्विइंद्रिय में 2, 2, 4, 2, 6 थे पर्याप्त में, उसमें से 2 कम कर दो, 6 और 4। एकेंद्रियों में, एकेंद्रियों पर्याप्त में कितना देखा था हमने? 1, 2, 3 और 4 पर्याप्त में 4 और अपर्याप्त में श्वासोश्वास नहीं, 3, 3, 3। अभी हमें अरिहंत भगवान को फिर याद करना है क्योंकि सबसे पहला नाम लेते हैं नमो अरिहंतान। अरिहंत भगवान को प्राण हो गए कि नहीं हो गए? द्रव्य प्राण हो गए। कितने हो गए? अरिहंत भगवान संगी पंचेंद्रिय है ना, हाँ अभी उनके प्राण बताओ 10। किसी को और कुछ कहना है? भावेश, 10 हो गए। दूसरा कोई मत यहां अरियंत भगवान कितनी इंद्रियों से जानते हैं? हमने क्या कहा, इंद्रियों के द्वारा जानने को हम इंद्रिय प्राण कहते हैं। अरियंत भगवान के द्रव्य इंद्रिया पांचों है, द्रव्य इंद्रिया पड़ी है वहां पर, आंख नाक सब है उनके, क्योंकि मुनिराज तो अरियंत बने हैं अभी, मनुष्य शरीर है वहां पर, तो शरीर तो बना है ना वहां पर, परंतु अभी उन केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जानते हैं, उनके एक भी इंद्रिय प्राण नहीं है। उनके काय बल प्राण है कि नहीं है? है, शरीर का ग्रहण चल रहा है अभी। वचन बल है कि नहीं है? दिव्य ध्वनि छूट रही है। मन के द्वारा जानते हैं कि नहीं?
नहीं,
वहां द्रव्य मन की रचना तो पौद्गलिक रचना पड़ी हुई है, उसका नो यूटिलाइजेशन, क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं। तो इसमें से ये दो ही लिए, अरिहंत भगवान को श्वासोश्वास है कि नहीं है? हाँ बोलो, पता ही नहीं हमको। हाँ दिखाई नहीं, आपने कब देखा अरिहंत भगवान? आपने उनकी मूर्ति देखी है? श्वासोश्वास होता है। ये तो हमने अरिहंत भगवान की मूर्ति स्थापन की, हमने उनको अरिहंतों को वहां स्थापित किया है ना, तो उनको भगवान जैसा है, परंतु उसको श्वास थोड़ा ही हमें दिखाई देगा। परंतु आपने सुना होगा जब 13वें गुणस्थान का अंत समय आता है तो श्वास का निरोध कर देते, इतना तो सुना होगा कि नहीं? तो उनके श्वासोश्वास प्राण भी है, आयु है कि नहीं उनके? है। तो 14वें गुणस्थान का जब अंत समय आने लगता है, काय बल प्राण है, वचन बल प्राण भी है, श्वासोश्वास भी है और आयु भी है। जब 13वें गुणस्थान का अंतिम समय नजदीक आता है तो श्वास का निरोध कर देते हैं, तो तीन हो जाएंगे, फिर वचन का भी निरोध करते और एक काय योग बाकी रहता है, तब उनके ये दो प्राण रहेंगे। पहले तो चार थे, फिर तीन हो गए, फिर दो हो गए। अब मेरा प्रश्न है, 14वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत भगवान को कितने प्राण है? हाँ, एक भी द्रव्य प्राण नहीं है। अच्छा, आप क्या कहते हैं सुष्मिता बे? 14वें गुणस्थान शुरू से अंत तक कौन से दो? नो, देर इज नो काय बल, काया है परंतु ग्रहण नहीं है, शरीर के परमाणुओं का ग्रहण रुक गया है। क्यों? औदारिक तेजस कारमान शरीर नाम कर्म का उदय 13वें के अंत तक है, आगे नहीं है। ना कर्म का ग्रहण होता है और ना शरीर के परमाणुओं का ग्रहण होता है, शरीर जो ऑलरेडी बना है वो वहां है, अभी नया ग्रहण निकल गया है। तो ना काय बल है, ना वचन बल है, ना ही श्वासोश्वास है, एकमात्र आयु प्राण है, क्योंकि आयु कर्म जितना है तब तक वो रहेंगे। आयु का अंतिम निषेक, अंतिम परमाणु खिर गए और वो सिद्ध बन जाएगा। अंतर्मूर्त के यहाँ तो केवल ही भगवान एक समय की भी बात बताएंगे। अंतर्मूर्त है 14वें का काल, अयुरुलु इतना बोलने के लिए जितना काल लगता है उतनी उसकी है। यहाँ सब बातें लिखी है, हम वो मैं आप लिख सकते हैं बाद में, हम तो अभी यहीं रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।
आपका प्रश्न क्या था?
एक अंतर्मूर्त ही है।
हाँ बिल,
आपको कौन सा निकालना है अभी?
वही लेना है,
चलो।